أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج إن شاء الله ہم گفتگو کریں گے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا نام اتنا زیادہ شہرت یا کیوں رکھتا ہے اور کیا اسباب ہیں اس کے، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی پیدائش ہے 604 ہجری اور تاریخ وفات ہے 670 ہجری، اور مزار مبارک ان کا ترکی میں قونیہ کے مقام پر ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام، جیسا کہ سب جانتے ہیں، جلال الدین ہے. روم اور رومی، یہ تخلص ان کا ہے. یہ بلخ کے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم شیخ بہاؤدین سے حاصل کی، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو مولانا روم کی دنیا ہی بدل گئی. کیسے دنیا بدلتی ہے اللہ والوں کی نگاہ سے، خود مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. یعنی مولوی نہیں بن سکا کبھی بھی مولائے روم، یعنی روم کا جو نامور شخص تھا، تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک کہ اس نے شمس تبریزی کی غلامی نہیں کی. مثنوی مولانا روم کی وجہ سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عام طور پہ پہچانا جاتا ہے، لیکن بہت بڑا حصہ ان کی شخصیت کا وہ ہے جس میں ان کی ذات، ان کی صفات شامل ہے. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے تحت دنیا میں مختلف اوقات میں اولیاء کرام کو بھیجا، اور اولیاء کرام کے اس طرح آ جانے سے جو تبدیلیاں دنیا میں آئیں، وہ اس طرح سے آئی کہ ان سب نے مل کر اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کو عام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس نظام کو قائم رکھا وہ نظام روحانیت ہے، ایسا روحانی نظام کہ جس نے انسانوں کی رہنمائی کی اور انسانوں کو سکون دیا. مولانا روم کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا روم کے پردادا حضرت حسین بلخی بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال بزرگ تھے، اور وقت کے بڑے بڑے حکام ان کا بڑا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ خوارزم شاہ جیسے مضبوط حکمراں جو کہ اپنی قوت کے اعتبار سے معروف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مولانا روم کے دادا سے کر دی تھی، اور جو ان کا علمی مقام تھا اس سے تو کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا. مولانا جلال الدین روم کے والد کا نام، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، شیخ بہاؤدین تھا، اور ان کے مریدوں میں سید برہان الدین ایک نامور عالم تھے، اور سید برہان الدین نے ہی مولانا روم کی تربیت کی. تقریباً 19 سال کی عمر میں مولانا روم اپنے والد کے ساتھ قونیہ تشریف لائے، اور پھر یہاں کچھ عرصے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. بہر طور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و ضبط کا جو حوصلہ دیا تھا اس کی وجہ سے آپ نے یہ صدمہ برداشت کیا، اور اس غم سے نکالنے کے لیے آپ نے 629 ہجری میں، جبکہ آپ 25 سال کے تھے، مزید علم حاصل کرنے کے لیے شام کا رخ کیا، سیریا. और यहां 7 साल तक आप रहे, फिर कोनिया वापस तशरीफ ले आए। मौलाना रूम का इम्तहान लिया गया और जब सैयद साहब को यकीन हो गया, सैयद साहब से मुराद यहां पर है उनके उस्ताद सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका यकीन पुख्ता हो गया कि मौलाना रूम जाहिरी उलूम मुकम्मल कर चुके हैं, तो फिर एक दिन आपने फरमाया, ए मखदूम जादे, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे वालिद की अमानत तुम्हें लौटा दूं। इसके बाद सैयद बुरहानुद्दीन ने आपको अपना मुरीद किया और तकरीबन 9 साल तक रूहानी तालीम देते रहे। सैयद बुरहानुद्दीन एक बाहोश बुजुर्ग और बुनियादी तौर पर एक आलिम और फाजिल शख्स थे, इसलिए तवील तरबियत के बाद भी मौलाना रूम की जिंदगी पर अक्ल का रंग गालिब रहा। दरअसल सैयद साहब यही चाहते थे कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहे और उन्होंने चाहा भी यही कि मौलाना रूम शरीयत की पासदारी करते हुए जाहिरी उलूम जो इल्म के हैं मरातिब उनको तय करते रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फितरी तौर पर बहुत जहीन शख्स थे, चुनाचे आपका यह आलम हुआ करता था कि जब किसी इल्मी तकरीब में खिताब करने के लिए आप खड़े हो जाते तो लोग पत्थर की तरह साकित और जामिद हो जाते और मौलाना की तकरीर इस तरह सुनते कि उन्हें अपने गिर्दोपेश की कोई होश ही ना होता। आपने ये देखा होगा कि हर दौर में जब आलिम या कोई बुजुर्ग इस मर्तबे का हो तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग होते हैं और हासिद और तंग नजर लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। चुनाचे ये लोग मौलाना के खिलाफ बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने लगे। एक जानिब जो दुनिया वाले थे, दूसरे लोग थे, वो आपके कमाल अजमत के कायल हुए। चुनाचे एक वाकया मैं बयान करता चलूं कि मौलाना को मौलाना की जाहिरी जिल्लत के लिए या तहकीर के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया गया। मौलाना रूम एक अजीम इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, अचानक एक शख्स खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, मौलाना मोहतरम, आप अपने पसंदीदा मौजू पर हफ्तों और महीनों की तैयारी के बाद तकरीर करते हैं, यह तो कोई कमाल की बात नहीं है। इस तरह तो कोई शख्स भी अपने इल्म का मुजाहरा कर सकता है, फिर यह आपकी कौन सी खूबी है? आपने फरमाया, मैंने कभी अपने कमालात का दावा नहीं किया, मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूं और मेरी जिंदगी का मकसद मखलूक खुदा की खिदमत है। वैसे अगर आप अपनी तरफ से किसी मौजू का इंतखाब कर लें तो मैं इस मौजू पर भी तकरीर करने की कोशिश करूंगा। ये जवाब था कि हजारों इंसानों का ये मजमा परेशान कि अब मौलाना क्या करेंगे। वो शख्स दोबारा उठा और मंसूबे के मुताबिक कहा, मौलाना आज आप सूरह वद्दुहा की तफसीर बयान करें। ये कहकर वो शख्स अपनी नशस्त पर बैठ गया। उस शख्स का ख्याल था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी किसी फिलबदी मौजू पर तकरीर करने से आजिज रहेंगे और इस तरह तमाशा बन जाएंगे। एक लम्हे के लिए मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहट नमुदार हुई, आपने अल्लाह की हम्द की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा और फरमाया, कुरान करीम की इस सूरह मुकद्दसा में इस्तेमाल होने वाला पहला हर्फ वाव है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। आज मैं इसी हर्फ की तशरीह करूंगा। यह कहकर मौलाना रूम ने अपनी तकरीर का आगाज किया और फिर मुसलसल 6 घंटे तक सिर्फ इस बात की वजाहत करते रहे कि अल्लाह ताला ने सूरह वद्दुहा में हर्फ वाव क्यों इस्तेमाल किया है। पूरा मजमन खामोश, सुकूत था पूरे मजमे पर। मौलाना रूम की जबान मुबारक से इल्म का समंदर उबल रहा था जिसकी तेज मौजों में आज सब कुछ बह जाएगा। ऐसा लगता था कि मौलाना पर जैसे नुजूल हो रहा हो। एक शख्स उठा और यह वो शख्स वो था कि जिसने मौलाना को नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक रुस्वा करने के लिए सवाल किया और उसने मौलाना रूम के कदमों पर सर रखकर कहा, वल्लाह आप अजीम हैं, आज पूरे रूम में आपका कोई शानी मौजूद नहीं। जो लोग आपसे हसद रखते हैं, बोझ रखते हैं, मैं भी उसी लानत का शिकार हो गया था, खुदा के लिए मुझे माफ फरमा दीजिए। मौलाना ने उसको गले लगा लिया, और ये अल्लाह वालों की शान होते कि अल्लाह वाले कभी किसी से बोझ नहीं रखते, कभी किसी से बुरा नहीं चाहते किसी का। और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है। चुनाचे गले लगाकर ये फरमाया कि मैं हर उस शख्स को माफ करता हूं जो मुझसे बगैर किसी सबब के दुश्मनी रखता है। अल्लाह इनके सीनों में भड़कती हुई आतिश हसद को ठंडा कर दे और इन्हें अपने फजलो करम से हिदायत बख्श दे। ये वो तरीका था जिसको आप सूफियों का तरीका कहते हैं, तसव्वुफ का तरीका कहते हैं। और इस पर जब कोई चले तो फिर अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जाहिरी तालीम और तरबियत के तमाम मराहिल तय करने के बाद आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी मौलाना को अपनी जिंदगी में एक खलासा महसूस होता था और तन्हाई में आप रोते थे और दोस्तों की महफिल में अक्सर आप फरमाया करते थे कि मैं आज भी प्यासा हूं और ये प्यास न जाने कब तक बरकरार रहेगी। जब लोग आपसे प्यास का मफहूम पूछते तो आप कहते मैं खुद भी नहीं जानता कि कैसी प्यास है, बस यूं महसूस होता है कि जैसे मेरी रूह अभी तश्ना है, अभी प्यासी है। मौलाना तश्नगी को महसूस करते और ये कैफियत रही, चलती रही। एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया जिसने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी को बदल दिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कुतुबखाना पूरे मुल्क में अपनी नादिर कुतुब यानी बड़ी अहम तरीन कुतुब या हवाला जात की वजह से मशहूर था। हुआ ये कि एक दिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कुतुबखाने में अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, अचानक एक अजनबी शख्स इजाजत के बगैर अंदर चला आया। मौलाना रूम फितरतन एक मिलनसार नम तबीयत के इंसान थे, इसलिए अजनबी की इस तरह आने पर आप नाराज नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्हें उस शख्स का इस तरह से आना अच्छा मालूम ना हुआ। मौलाना ने महसूस किया अंदरूनी तौर पर, लेकिन इजहार नहीं किया। अजनबी अपने हुलिये के एतबार से एक आम सा आदमी लगता था और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, मामूली सा लिबास था। मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि उसकी शख्सियत जो जाहिरी तौर पर थी वो बहुत गैर मौसर थी, कोई बहुत ज्यादा मुतासिर को नहीं थी। किसी ने उसकी परवाह भी नहीं की, वो शख्स सादा तबीयत आदमी सादा कपड़ों के साथ महफिल में दाखिल हुआ। मौलाना रूम ने भी एक नजर उस पर डाली और शागिर्दों को दर्ज देने में मशगूल हो गए। अजनबी ने आते ही क्या काम किया, उसने आते ही अहले मजलिस को सलाम किया और फिर हाजरीन के सफों से गुजरता हुआ, सफों को चीरता हुआ मौलाना रूम के करीब जाकर बैठ गया। मौलाना के शागिर्दों को अजनबी की ये बेतकल्लुफाना तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और मौलाना को भी ये तरीका बहुत नागवार गुजरा, मगर मौलाना भी खामोश रहे मुरब्बत की वजह से और शागिर्द भी अपने उस्ताद के एहतराम में खामोश रहे। अगर उनका बस चलता तो उस शख्स को इस इल्म की महफिल से निकाल देते या फिर सबसे पीछे बिठाते। बाहर तौर मौलाना का दर्द जारी था। इस दौरान हाजरीन ने महसूस किया कि अजनबी शख्स को मौलाना रूम के दर्द से कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी मौलाना रूम पढ़ा रहे और वो अजनबी शख्स कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा कि मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं उनको। वो बार बार कीमती किताबों के जखीरे को देख रहा था। आखिर उससे जब्त ना हुआ तो वो दर्स के दौरान ही बोल उठा, मौलाना ये क्या है? अजनबी ने नादिर और नायाब किताबों की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये किताबें ये क्या है ये? मौलाना के चेहरे पर गुस्से का रंग तो आया और उन्हें बड़ी अजीब सी बात लगी कि मैं पढ़ा रहा हूं और ये मुदाखलत कर रहा है बजाय इसके कि ये सीखे। मगर मौलाना ने फौरन अपने जज्बात पर काबू पा लिया, जरा सब्र करो मैं अपना काम मुकम्मल कर लूं फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मौलाना रूम बड़े शीरी कलाम थे मगर अजनबी की इस गैर अखलाकी हरकत के बायस आप में गुस्सा आ गया, तलखी से महसूस हुई आप। और फिर हुआ ये कि अजनबी ने फिर कोई सवाल ही नहीं किया, लेकिन मौलाना रूम के कुतुब खाने का वह जायजा लेता रहा। मौलाना के सबक से कोई उसको दिलचस्पी नहीं थी। उचाट उचाट तरीके से वो बैठा हुआ था, तबीयत में उकताहट थी, और इस अमल को सारे लोग महसूस कर रहे थे, जो शागिर्द थे वो भी, मौलाना रूम भी। आखिर मौलाना का दर्स खत्म हुआ और आप उस अजनबी की तरफ मुतवज्जो होते हुए उसके आने का सबब पूछा कि आप कौन हैं, किस लिए तशरीफ आप यहां लाए हैं। मौलाना, आप मेरे बारे में दरियाफ्त ना करें कि मैं कौन हूं, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये क्या है। इशारा फिर किताबों की तरफ था, अजनबी के उठे हुए हाथों का रुख फिर वही किताबों की तरफ था, और किताबों की तरफ बार बार इशारा कर था। ये शख्स जो आया था उसका सवाल बड़ा गैर वाजे था। बिलाखिर मौलाना रूम का लहजा तल्ख हो गया, क्या तुम्हारी नजर कमजोर है, तुम्हें नजर नहीं आता। अजनबी बड़े इत्मीनान के साथ बैठा रहा और जवाब देने लगा कि नहीं, मेरी नजर तो कमजोर नहीं है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, बहुत दूर तक मेरी निगाह देखती है। तो फिर क्या बात है, तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा कि तुम अजीब तरह की गुफ्तगू मुझसे कर रहे हो। मौलाना के जुमले में तलखी थी, और जो इंसान के अंदर एक फितरी झुंझुलाहट होती है वो थी। मुझे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, मगर मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूं कि ये क्या है। एक बार फिर अजनबी ने उसी अंदाज से मौलाना से पूछा, बार बार एक ही सवाल दोहराया जा रहा था। मौलाना को बहुत गुस्सा आया, आपने फरमाया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। मौलाना का जवाब सुनकर अजनबी खड़ा हो गया, फिर उसने किताबों की तरफ इशारा किया और एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, अच्छा ये वो है जिसे मैं नहीं जानता। अभी फजा में अजनबी के अल्फाज गूंज रहे थे कि यकायक कुतुबखाने में आग भड़क उठी और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तमाम नादिर किताबें जलने लगी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, इतनी तेजी के साथ हुआ, और इतना नाकाबिले यकीन था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह परेशान हो गए, दम बखुद रह गए, और सारे मजलिस में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब पर सकता आ गया। अजनबी बगैर किसी की परवाह किए आगे बढ़ा। मौलाना रूम ने पुकार कर कहा, ऐ शख्स ये क्या है। मौलाना ने आग के भड़कते हुए शोलों की तरफ इशारा किया। अजनबी मुस्कुराया, मौलाना ये वो है जिसे आप नहीं जानते। इतना कहकर अजनबी वापस जाने लगा। मौलाना रूम के होठों से आह निकली, हाय मेरी नादिर किताबें, हाय मेरा इल्म, हाय मेरा इल्मी जखीरा। ऐ शख्स कितना जालिम है तू, तेरी वजह से सब कुछ मेरा राख हो गया। मौलाना अपने इल्मी वर्षे पर आहोफगा कर रहे थे, रो रहे थे, और बड़ा अफसोस हो रहा था। वो जो अजनबी शख्स था वो रुका और रुककर मौलाना से मुखातिब होकर कहा, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी किताबें वापस करता हूं। ये कहकर उस अजनबी शख्स ने हाथ का इशारा किया और जो लोग वहां बैठे हुए थे मौलाना समेत, सबने देखा कि भड़कते हुए शोले बुझ गए। मौलाना रूम के कुतुबखाने में आग का नाम निशान नहीं था। इसके बाद अजनबी कुछ कहे बगैर तेजी के साथ बाहर निकल गया। इस वाकये की वजह से मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हैरत तारी हो गई, सकता तारी हो गया। खड़े रहे आप, अपनी किताबों की तरफ बढ़े। आप समझ रहे थे कि शायद कुछ किताबें जल गई होंगी या कम से कम कुछ तो नुकसान पहुंचा होगा किताबों को, लेकिन मौलाना रूम हैरत में रह गए कि सारी किताबें वैसे के वैसे ही थी। एक एक वर्क को देखा शागिर्दों ने, मौलाना ने, सब ने, कुछ भी किताबों पर आग के आसार नहीं थे। शागिर्द परेशान हुए और शागिर्दों ने परेशान होकर मौलाना रूम से अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम ये सब क्या है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बड़े हैरत और हसरत से कहा, ये वो है जैसे मैं भी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते। ये औलिया की नजर थी, ये फैजान नजर था, या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा खूबसूरत इशारा इस शेर में किया है कि अगर इसको सुने और तवज्जो दें तो महसूस होगा कि क्या बात है इसमें, क्या रमज है। बस तस्कर अमीश इस तरह भी बयान करते हैं कि एक दिन मौलाना रूम हौस के किनारे बैठे हुए थे और मुताला कर रहे थे। अचानक एक अजनबी शख्स आया और मौलाना के करीब रखी हुई किताबों के बारे में पूछने लगा कि मौलाना ये क्या है। मौलाना रूम ने इंतहाई बेरुखी से जवाब दिया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। अजनबी ने मौलाना से मजीद कोई सवाल नहीं किया और तमाम किताबें उठाकर तालाब में डाल दी। मौलाना रूम एक गैर मुहज्जब अजनबी की इस हरकत को बर्दाश्त न कर सके, बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, ऐ जाहिल शख्स, तुझे खबर है कि तूने कैसी अहम तरीन किताबें तबाह कर डाली? ये वो कीमती नुस्खे थे जो किसी शहनशाह को भी मैसर नहीं होंगे। अजनबी ने मौलाना रूम को शदीद इस्तराब में देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताबें वापस किए देता हूं। इतना कहकर अजनबी शख्स ने हौज में हाथ डाला और एक रिवायत में कि हौज में खुद उतर गए और तमाम किताबें निकालकर मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ने शदीद हैरत के आलम में अपनी किताबों को देखने लगे। किसी किताब का एक वक्फ भी पानी में भीगा नहीं। ये क्या है? मौलाना रूम ने अजनबी से पूछा। अजनबी शख्स मुस्कुराते रहे, मौलाना ये वो है जिसे आप नहीं जानते। इतना कहकर अजनबी शख्स चले गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह हौज के किनारे सकते के आलम में बैठे रहे। जिस शख्स ने मौलाना को अपनी करामत अल्लाह के करम से दिखलाई वो मशहूर बुजुर्ग हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मौलाना की मुलाकात, मौलाना की दुनिया ही बदल गई। ऐसा इनकलाब था कि मौलाना अपनी रविश ही भूल गए, कुतुब खाना बंद कर दिया, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला खत्म कर दिया। बस एक ही काम था मौलाना को कि हजरत शम्स तबरेज की खिदमत में हाजिर रहते और उनकी खिदमत को ही इबादत समझते। पूरे शहर में एक हंगामा हो गया और मौलाना के हजारों अकीदतमंद शागिर्द, प्यार करने वाले लोग ये कहा करते थे कि आज कूनिया वीरान हो गया है और इस वीरानी का सबब वो जाहिल फकीर है जिसने हमसे हमारा आलिम छीन लिया है। हर दौर में ऐसा होता है कि लोग औलिया किराम के इल्म को नहीं समझते, उनके कपड़ों को, उनके जाहिर को देखकर, उनके हुलिये को देखकर ही समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, अजीब से कपड़े पहनता है, दाढ़ी अजीब सी है, चेहरा अजीब सा है, और जाहिरी इल्म वाले लोग बातिन की खूबसूरती को समझ ही नहीं सकते। और इसीलिए वो औलिया किराम की तोहीन किया करते थे आम लोग। और बाज लोग तो अपनी गुस्ताखी में इतने आगे निकल गए थे, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द या प्यार करने वाले लोग, कि वो कहा करते थे, कहां आप जैसा फाजिल इंसान यानी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, और कहां वो बेइल्म कूचा गर्द शख्स। मौलाना रूम सब कुछ सुनते थे मगर किसी बात का मौलाना रूम की अकीदत पर असर नहीं होता था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी बात की परवाह ही ना करते, कौन क्या कह रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं। बस मौलाना को तो एक ही था, तुम क्या जानो कि शम्स तबरेज कौन है। फिर हालात ऐसे बदले कि अब एक मखसूस कमरा था, हजरत शम्स तबरेज थे और मौलाना रूम, बाकी दुनिया से अब मौलाना का कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब मौलाना रूम को घर वालों का भी होश ना रहा, बीवी शौहर से और बच्चे बाप से बदजन रहने लगे। आखिर मौलाना रूम के अहले खाना भी हजरत शम्स तबरेज को जादूगर कहकर पुकारने लगे। अल्लाह अकबर! देखा आपने कि वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मौजात थे उनको देखकर लोग नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर को जादूगर साहिर कहा करते थे, और यहां औलिया कराम को अल्लाह ने जब करामा से नवाजा तो लोग जादूगर कहते हैं। तकलीफें वहां पर भी हैं, तकलीफें यहां पर भी हैं, क्योंकि नबूवत हुजूर पर खत्म हो गई, आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब ये मनसब रूहानियत का औलिया कराम को मिला तो उनको भी वही तकलीफें मिली जो नबूवत के विरसे में आई थी, क्योंकि कोई वली बगैर तकलीफ के अपने मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। कोई ये दावा करे तो फिर वो वली नहीं, सब कुछ है लेकिन वली नहीं है। और अक्सर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के घर वाले कहा करते थे कि तबरेज के शहर ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, खुदा उसे गारत करे। नौजबिल्ला में जालिक औलिया कराम के लिए क्या जबान इस्तेमाल ये लोग करते। कोनिया का एक शख्स हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बहुत गुस्ताखी किया करता था। फिर एक वक्त वो आया कि जब गुस्ताखी उसकी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उसकी जबान छीन ली और वो गूंगा हो गया, अपनी जबान से बोलने के काबिल ही नहीं रहा। जब ये देखा तो सब लोग मौलाना की बारगाह में हाजिर हुए, शम्स तबरेज की बारगाह में हाजिर हुए और माफी मांगी। अब आइए हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह का कुछ पस मंजर देख लें ताकि ये मालूम हो कि ये बुजुर्ग कौन है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह का पूरा नाम मोहम्मद शम्सुद्दीन था। शहर तबरेज के हवाले से आपको शोहरत मिली। तबरेज ईरान का एक शहर है। हजरत शम्स तबरेज 560 हिजरी में सब्जवार यानी इराक का जो इलाका है उसमें पैदा हुआ है। आपके वालिदे गिरामी का नाम था सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह का सिलसिले नसब बराह रास हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह से मिलता है। होश संभालते ही हजरत शम्स तबरेज को तालीम और तरबियत के लिए उनके चचा हजरत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सुपुर्द कर दिया गया और चचा ने आपकी तरबियत की, यहां तक कि तफसीर, फिका और हदीस के साथ दीगर उलूम भी आपने उन्हीं से हासिल किए। जब 579 हिजरी में शेख सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श दावत इस्लामी के लिए बदख्शां की तरफ रवाना हुए तो हजरत शम्स तबरेज को भी अपने साथ ले गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी और बदख्शां में हजारों लोगों को वहदानियत और रिसालत की तालीम दी उन्होंने। फिर तिब्बत कोचक की तरफ चले गए और सैकड़ों इंसानों को दीन इस्लाम में दाखिल किया और फिर यहां से बाप और बेटे ने कश्मीर का रुख किया। उस वक्त यहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते थे। हजरत सैयद सलाहुद्दीन और हजरत शम्स तबरेज की कोशिशों से हजारों बुत परस्त लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस इलाके के चंगड़ कौम ने उन्हें बहुत परेशान किया मगर बाद में फिर यही लोग आपके खादिम बन गए। 586 हिजरी में हजरत शम्स तबरेज अपने वालिद मोहतरम के हमरा सब्जवार वापस तशरीफ ले गए। यहां हजरत शम्स तबरेज की शादी हो गई। आपके दो बेटे सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन अहमद पैदा हुए। सैयद अलाउद्दीन अहमद जिंदा पीर के लकब से मशहूर हुए। वाकयात हालात के अतबार से हजरत शम्स तबरेज की शख्सियत बहुत ज्यादा वसी नजर आती है। आपने ज्यादातर जिंदगी खानाबदोशी की गुजारी है और तमाम उम्र एक अजीब अजियत और कर्ब में मुबतला रहे। बगदाद तशरीफ ले गए तो मकामी उलमा को आपके ख्याल से शदीद इख्तलाफ हो गया और बादशाह वक्त इन उलमा के जेर असर था। चुनाचे नतीजे की सूरत में हजरत शम्स तबरेज को शहर बदर होना पड़ा। आप बगदाद की हदूद से अभी निकले ही ना थे कि अचानक बादशाह का बेटा बीमार पड़ा और दूसरे दिन मर गया। बादशाह को ख्याल गुजरा कि शायद यह अलमनाक वाकया हजरत शम्स तबरेज से बदसलूकी की वजह से हुआ है। मजबूरन उसने अपने मुशीरों से मशवरा करके हजरत शम्स तबरेज की तलाश शुरू कर दी। कोई भी सूरत निकले उन्हें बगदाद वापस लाओ, बादशाह ने यह हुक्म दे दिया। चुनाचे हजरत शम्स तबरेज बगदाद के नवाही इलाके में पहुंचे थे। आप उनसे अर्ज किया गया कि हुजूर आप बगदाद वापस तशरीफ ले चले। हजरत शम्स तबरेज के चेहरे पर अजियत का रंग उठा और कहा कि कल जिस जगह से मुझे जलील करके निकाला गया था आज उसी मकाम पर वापस जाने के लिए कह रहे हो। आखिर तुम लोगों पर क्या मुसीबत पड़ी है कि मुझे खाना बदोश को सुकून की जिंदगी भी नहीं गुजारने देते। हुजूर हम क्या करें, हमारे बादशाह का यही हुक्म है, उन्होंने खुशामद करते हुए सबने अर्ज किया। मैं तो बस एक बादशाह का हुक्म मानता हूं और बाकी बादशाहों को मैं नहीं मानता। वो वाहदहुल्लाह शरीक है, वो नूर का बादशाह है, वो नूर तकसीम करता है, वो नूर ही नूर है, वो वाहिदो यकता है और बादशाह का हकदार है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी बेतनाई के साथ जवाब दिया उन्हें। हजरत शम्स तबरेज के इनकार से सूरत हाल बहुत बिगड़ गई। शाही कारिंदे आपके कदमों से लिपट गए और बहुत देर तक आजजी का मुजाहरा करते रहे। आखिर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को उन पर रहम आया और आपने ये कहा कि चलो तुम्हारे कहने से चलता हूं, मगर बगदाद के लोग ज्यादा दिन मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह शाही महल में पहुंचे तो वहां लोग रो रहे थे, मातम हो रहा था। तमाम दरबारी स्याह लिबास पहने हुए थे और अपने वली अहद सल्तनत की मौत का सोग मना रहे थे। बादशाह ने बहुत ज्यादा आपका एहतराम किया, हर तरफ आंसू ही आंसू थे। आपने पूछा सब कुछ क्या है, क्यों ये पूरा शहर इतना मातम में डूबा हुआ है? जब मैं यहां से गया था तो बगदाद के तमाम दरों दीवार झूम रहे थे, मगर आज ये कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा यहां क्यों है? बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से हजरत शम्स तबरेज को साथ लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां उसके महबूब बेटे की लाश रखी हुई थी। हजरत शम्स तबरेज ने सवालिया नजरों से बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने अर्ज किया, ये मेरे जवान बेटे की लाश है, ये मेरे जवान बेटे की वो मैयत है जो मेरे सामने है और आपके सामने है। आपके जाते ही बगदाद में ये बीमार हुआ और देखते देखते ये मर गया। मैं समझता हूं कि मैंने जो आपकी गुस्ताखी की थी उसी की वजह से मुझे ये सजा मिली। शम्स तबरेज मुस्कुराने लगे। दरवेश के साथ लोग गुस्ताखी से पेश आते ही रहते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बादशाह बहुत देर तक माफी मांगता रहा। आपने फरमाया, मैंने गुज़िश्ता बातों को भुला दिया है, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? बादशाह ने अर्ज की कि मैं समझता हूं कि आपका दिल दुखाने की वजह से मेरा बेटा मरा है और मुझे इसकी सजा मिली है। आपने फरमाया कि दिल तो तूने दुखाया था, सजा तेरे बेटे को क्यों मिली? बादशाह ने कहा कि हुजूर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ। और साथ साथ बादशाह ने यह भी कहा कि अल्लाह अपने राजों को खुद ही बेहतर जानता है। सरकार ने फरमाया, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला ने, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बादशाह ने फरमाया, बादशाह ने अर्ज किया, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के हक में दुआएं खैर फरमा दें। हो सकता है कि आपकी दुआओं से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल जाए। आपने जवाब दिया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये तो मर गया, जो चला गया वो चला गया। हजरत शम्स तबरेज ने फरमाया, बहरहाल तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए और तुम्हारे आंसू थम जाए, इसके लिए मैं अपने मालिक की बारगाह में अर्ज किए देता हूं। और ये कहकर हजरत शम्स तबरेज ने आंखें बंद कर ली। फिर आपके होठों को जुम्बिश हुई और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, अगर तूने इस लड़के पर मेरे दिल आजारी के बायस मौत मुसलत कर दी है तो मैं इसे माफ करता हूं। तू भी इस आजिज बंदे मोहम्मद शमसुद्दीन की खातिर अपने बेपनाह और बेमिसाल फजलो करम का मुजाहरा कर और इस बच्चे को माफ फरमा दे। अभी आपकी दुआ के अल्फाज गूंज रहे थे कि उस शहजादे के जिस्म को जुम्बिश हुई और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हैरतजदा नजरों से चारों तरफ देखने लगा। बादशाह और बगदाद कुछ वक्त तक तो हैरत और सुकूत के आलम में खड़ा रहा। कभी वो हजरत शम्स तबरेज की तरफ देखता, कभी अपने बेटे की तरफ देखता कि मरने के बाद वो कैसे वापस लौटा। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर लौट आया और आंसुओं का समंदर ऐसा उमड़ा कि वो खुशी और अकीदत के साथ फरमाया रवाए बगदाद शम्स तबरेज के कदमों में गिर गया। हुजूर, ये सब कुछ आप ही की दुआओं का असर है। हरगिज नहीं, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शाह बगदाद को उठाते हुए कहा, यह तो उस कादरे मुतलक की करम नवाजी का अदना मुजाहरा है जो अपनी जात में लाशरीक है, बस उसी का शुक्र अदा करो और उसी की तस्बीह बयान करो। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की अल्लाह की तरफ से ये ताईद थी और ये जो करामत अल्लाह ने उनके जरिए जाहिर की थी ये बहुत बड़ी करामत थी, लेकिन ये करामत उनके लिए एक अजाब बन गई। जब बगदाद के उलमा को यह मालूम हुआ कि शम्स तबरेज वापस आ गए हैं और शहजादा उनकी दुआ से जिंदा हो गया तो उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। और ये कहा कि ये तो शोबदाबाज है, जादूगर है, और इस्लाम में शोबदाबाजों की कोई गुंजाइश नहीं है। बगदाद के बादशाह ने बहुत से दलाइल दिए ताकि हजरत शम्स तबरेज का दिफा हो सके, और यहां तक कहा कि अगर ये शोबदा है तो फिर ऐसा करो कि तुम लोग भी ऐसा शोबदा मेरे सामने पेश करो। सब उलमा अंदर से एक थे, उन्होंने कहा हम अहले ईमान हैं और हमें शोबदाबाजी से कोई निस्बत नहीं। उलमाए बगदाद ने बैक जबान जब ये सब कुछ कहा और ये कहा कि इन्होंने पहले जादू की कुव्वत से शहजादे को बेहोश कर दिया और फिर खुद ही जादू के असरात को जाहिल कर दिया, नतीजा ये हुआ कि शहजादा होश में आ गया और सादा लो आवाम ये समझने लगे कि वो मौत के बाद जिंदा हो गया। ये सब फरेब नजर है और इसी को शोबदाबाजी कहते हैं और इसी को जादूगरी भी कहते हैं। अगर वो ऐसा ही शख्स है और मुस्तजाब दावत भी है, यानी जिसकी दुआएं कबूल होती हैं, तो फिर किसी कब्रिस्तान में जाकर दुआ के लिए हाथ उठा दे और इन मुर्दों को जिंदा कर दे जो बरसों से गहरी नींद सो रहे हैं। शाह बगदाद के सामने अजीब सूरत हाल थी। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत हिमायत की उसने, मगर बगदाद के उलमा यही कहते रहे कि वो जादूगर है और इस्लाम में साहिबी हराम है। चुनांचे बड़ी तवील बहस के बाद उलमाए बगदाद ने हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगा दिया और मुतालबा किया कि इनकी खाल खिंचवाकर बगदाद से बाहर निकाल दिया जाए। बगदाद के तमाम जो अराकीन थे, जो अराकीन सल्तनत जिसको कहते हैं आप, गवर्नमेंट के सर्वेंट थे या जो मिनिस्टर्स थे, वो भी सब उलमा के साथ हो गए। चुनाचे बादशाह की मर्जी के खिलाफ भरे मजमे में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई और इस हालत में बगदाद से निकाल दिया गया। पूरा जिस्म आपका लहूलहान था। जो वली अहद, जिसको वली अहद सल्तनत कहते हैं, शहजादा मोहम्मद को जब हजरत शम्स तबरेज से का यह हालत मालूम हुआ, यानी शहजादा मोहम्मद को हजरत शम्स तबरेज से बहुत अकीदत थी, और जब उसको ये मालूम हुआ कि आपको निकाल दिया गया शहर से, तो उसने भी उमराए सल्तनत को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस मुल्क में हजरत शम्स तबरेज जैसे साहिब कमाल बुजुर्ग के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इस लानत कदे में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहजादा मोहम्मद हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। बगदाद से हजरत शम्स तबरेज ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मसाफत तय करके मुल्तान पहुंचे और फिर इसी तारीखी शहर में सुकूनत इख्तियार की। उस वक्त मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदा थे, आप हयात थे, और जब आपको हजरत शम्स तबरेज की आमद की इत्तला मिली तो शेख ने उनकी खिदमत में दूध का प्याला भेजा। हजरत शम्स तबरेज ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर इसमें गुलाब का फूल डाल दिया, और गुलाब का फूल डालने के बाद हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के खादिम को यह दूध वापस कर दिया। अब बाज अहले तसव्वुफ ने इस वाकये को किस तरह से बयान किया है, उन्होंने कहा कि दूध का जो लबरेज प्याला था जो उन्होंने भेजा था हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने, उससे मुराद ये थी कि मुल्तान में अब किसी दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं है, यानी प्याला भरा हुआ है दूध से। और जवाब में हजरत शम्स तबरेज ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डाल दिया, इससे उसका मकसद यह था कि वो मुल्तान में फूल बनकर रहेंगे, यानी उनकी जात से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत शम्स तबरेज अपने वादे पर कायम रहे, मगर मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपकी शदीद मुखालफत की और आपकी इंतहाई दर्जे की मुखालफत करते रहे। एक बार यह हुआ कि हजरत शम्स तबरेज को गोश्त भूनने के लिए आग की जरूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संदिग्ध शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि दिलकश चेहरे पर उनके जख्मों के निशानात उभर गए। हज़रत शम्स तबरेज ने जब उनके चेहरे को देखा तो कहा, ये क्या है, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादा मोहम्मद ने पूरा वाकया सुना दिया तो शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से बाहर निकले, गोश्त का टुकड़ा हाथ में लिया और फिर हजरत शम्स तबरेज ने आसमान की तरफ नजर की और अल्लाह से दरख्वास्त की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, तू भी सूरज, मैं भी सूरज, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और फिर यह गर्मी इतनी बढ़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बन गया। कुछ अहले तसव्वुफ लोग, औलिया इकराम, नेक लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सूरत हाल को देखा तो हजरत शम्स तबरेज की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म में पूरे शहर को सजा दोगे? ये नादान नहीं, सफाक है। हजरत शम्स तबरेज ने गजबनाक लहजे में जवाब दिया, आग जैसी बेकीमत चीज नहीं दे सके, मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इस बच्चे का? जानते हो उसे ये कौन है? बगदाद का शहजादा है, मेरी खातिर दरवाजे दरवाजे भीख मांगने के लिए गया है। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूं? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे, उस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। औलिया किराम और नेक लोग आपकी बारगाह में हाजिर थे, अर्ज करने लगे, ये आपके मकाम से वाकिफ नहीं हुजूर, खुदा के लिए इन्हें माफ फरमा दीजिए। मुल्तान के जो राजदान लोग थे, जो जानते थे, जो दानाए राज थे, उन्होंने कहा कि हुजूर, ये आपकी शान के लायक नहीं, आपका मर्तबा हम जानते हैं। खैर, जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ किए देता हूं। हजरत शम्स तबरेज ने मकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातिब होते हुए कहा, अपनी हरारत कम कर दे, पता नहीं ये लोग हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका यह फरमाना था कि सूरज की हरारत यानी उसकी गर्मी दुरुस्त हो गई, एतदाल उसमें आ गया। 675 हिजरी में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपका मजार मुबारक एक किला नुमा फसील के अंदर शेख मोहम्मद जमाल मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोजे से कुछ फासले पर है। मशहूर मौर्रिख कासिम फरिश्ता ने इस वाक्य को बयान किया है और ये कहा है कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे और हजरत शम्स तबरेज अपने विलायत के दर्जे में इस आला मुकाम पर थे कि जो कुछ अल्लाह से वो गुजारिश करते अल्लाह पाक उन्हें देता। अल्लाह ताला ने हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए उनके मुरीद कामिल हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो मकाम अता फरमाया कि जिसको कोई समझ ही नहीं सकता। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, इसको अगर हम मजीद आगे बढ़ाएं और इस पर अगर हम तबसरा करें तो कुछ बहुत अहम वाकयात भी रूनुमा होते हैं कि कैसे हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरफान की मंजिल में आगे बढ़ते रहे और किस तरह उन्होंने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को आगे बढ़ाया। वाकयात में एक वाकया ये भी है कि हजरत शम्स तबरेज को आलम गैब से इशारा हुआ था कि रूम चले जाओ, वहां तुम्हारी मुराद पूरी होगी और तुम्हें एक ऐसा शख्स मिलेगा जो तुम्हारी सोहबत से बहुत कुछ सीखेगा, क्योंकि तुम्हें यह शिकवा है कि कोई तुम्हारी सोहबत से कुछ सीख नहीं सका। चुनाचे गैब के इस इशारे को समझते हुए वो यानी हजरत शम्स तबरेज उसी वक्त चल खड़े हुए। कोनिया पहुंचे तो रात का वक्त हो चुका था। रात को आप सराय में रुक गए। सुबह हुई तो आपने देखा कि सराय के दरवाजे पर एक बुलंद चबूतरा था। शहर के अक्सर अमीर तरीन लोग तफरी के लिए इसी चबूतरे में बैठे थे। हजरत शम्स तबरेज भी एक गोशे में जाकर बैठ गए, खामोशी से लोगों को देखने लगे। एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी रास्ते से गुजरे तो हजरत शम्स तबरेज चौंक उठे। मौलाना के हजारों शागिर्द थे जो हाथ बांधे और नजरें झुकाए अपने उस्ताद के पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बादशाह वक्त चल रहा हो।
شمس تبریز کی دل سے آواز آئی، یہی ہے وہ مرد خاص جو تیری صحبت کا متحمل ہو سکتا ہے. جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو حضرت شمس تبریز نے کسی مقامی باشندے سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں، یہ بڑی شان والے لگتے ہیں. اس شخص نے کہا، یہ مولانا جلال الدین رومی ہے، سب سے بڑے عالم ہیں یہاں کے، اور ان کے علم و فضل میں کوئی ان کا مساوی نہیں ہے. پھر حضرت شمس تبریز نے اسی شخص سے مولانا روم کی خانقاہ کا پتہ پوچھا، اور دوسرے دن مولانا روم کے کتب خانے میں جا پہنچے. پھر کتابیں جلنے کا وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے اس سے قبل بیان کیا ہے. ملاقاتیں ہوتی رہیں. ایک دن حضرت شمس تبریز نے مولانا روم سے پوچھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان دونوں واقعات میں کس طرح تعلق ہے؟ کہ ایک طرف حضرت بایزید کا یہ حال تھا کہ آپ نے اس خیال سے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا کہ پتہ نہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح کھایا ہے، اور دوسری طرف اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عظمتوں اور بزرگوں کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. یہ ایک طرح کی پہیلی تھی یا ایک مہمہ تھا جو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اگرچہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، لیکن مقام ولایت میں وہ ایک خاص درجے پر ٹھہر گئے تھے، اور اس درجے کی عظمت کے زیر اثر ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے. اس کے برعکس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منازل تقرب میں ایک پائے سے دوسرے پائے میں لمحے میں چڑھ جاتے، اور اس لیے جب بلند پائے پر پہنچتے تھے تو پہلا پایا اس قدر پست نظر آتا تھا کہ اس سے استغفار کرتے تھے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے. بغداد کے شہزادے محمد کی طرح مولانا روم بھی حضرت شمس تبریز کی شخصیت کے گرویدہ ہو گئے، اور پھر آپ کی محبت اس قدر بڑھی کہ مولانا روم ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے. مولانا کے شاگرد اور آپ کے گھر والے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے. حضرت شمس تبریز اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ایک رات تمام لوگ گہری نیند سو رہے تھے، حضرت شمس تبریز خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل کر چلے گئے. صبح جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی. دیوانہ وار پاگلوں کی طرح ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، گلی کوچا جگہ جگہ شمس تبریز کی آوازیں، لیکن حضرت شمس تبریز تو کونیا کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور اہل خاندان حضرت شمس تبریز کی روپوشی سے بہت خوش تھے، اور کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ وہ کونیا سے جادوگر چلا گیا. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس جادو سے آزاد ہو جائیں گے اب. لیکن بات بڑی عجیب ہوئی، حضرت شمس تبریز کی گمشدگی کے بارے میں صرف ایک شخص سپہ سالار نے، جو مولانا روم کی خدمت میں 40 سال گزار چکے تھے، لکھا ہے کہ وہ فتنے کے خوف سے شب کی تاریکی میں کہیں چلے گئے تھے. اس کے برعکس تمام تذکرہ نویسوں نے یہ المناک حقیقت بیان کی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت شمس تبریز سے ملاقات کرنے کے بعد ساری دنیا کو فراموش کر کے بیٹھ گئے. اس دور میں مولانا کے بعض انتہا پسند مریدوں نے حسد کی وجہ سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا. اخبار الصالحین کے مصنف کا خیال ہے کہ ایک بار جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا روم کے پاس خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اکیلے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے باہر سے آواز دے کر آپ کو بلایا. حضرت شمس تبریز نے مولانا روم کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. ابھی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صورت کو سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ صورتحال کیا ہے، کہ حضرت شمس تبریز اٹھ کر باہر چلے گئے. 7 افراد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے. جیسے ہی شمس تبریز باہر تشریف لے گئے، ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا. قتل ہوتے وقت حضرت شمس تبریز نے اس قدر زور سے نعرہ مارا کہ 7واں آدمی بے ہوش ہو گیا، اور بقیہ لوگ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ان کی روحیں فنا ہو گئی. پھر وہ مرشد کی چیخ سن کر مولانا روم رحمت اللہ تعالی باہر آئے. حضرت شمس تبریز کی لاش موجود نہیں تھی، صرف خون کے چند قطرے فرش پر نظر آئے. حضرت شمس تبریز کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاء الدین بھی موجود تھا. اس واقعے کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر بیٹے کا منہ نہیں دیکھا. پھر کچھ دن بعد علاء الدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا. بیماری کے دوران اس نے عزیزوں کے ذریعے مولانا روم سے معافی طلب کی، مگر مولانا نے اسے معاف نہیں کیا. پھر کچھ دن بعد علاء الدین محمد شدید اذیت کے عالم میں مر گیا. مولانا روم نے اس کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی. حضرت شمس تبریز کے قتل کا یہ واقعہ 645 ہجری میں پیش آیا. ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت شمس تبریز کو قتل کر کے آپ کی لاش کے ٹکڑے ایک کنویں میں ڈال دیے گئے. کچھ دن بعد مولانا روم کے دوسرے فرزند سلطان ولد کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حضرت شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو کنویں سے نکال کر مدرسے کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا. اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے، اور پھر آپ کا کوئی سراغ نہیں ملا. پھر وہ کون سے شمس تبریز ہیں جو ملتان میں مدفون ہیں؟ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وہی شمس تبریز ہیں جو مولانا روم جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے. پھر قونیہ میں کون قتل ہوا؟ بہرحال ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں. یہ روایات میں نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ احباب تک یہ بات پہنچ جائے کہ حالات کیا ہیں اور اولیاء کرام کن مشکلات سے گزرتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جب ایک بار حضرت شمس تبریز اور مولانا روم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو پھر ان بزرگوں کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ پر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ایک نورانی نظر نے یہ اثر ڈالا کہ وہ شمس تبریز کے قلندری کے گرویدہ ہو گئے، دیوانے ہو گئے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اب کیفیت دیکھیے کہ پیر و مرشد اب ان کے پاس نہیں ہے، محبوب ان سے دور ہو گیا. اب راتیں ان کی بے آرام ہو گئی، نیند خواب سب چلے گئے. ایک عجیب دل میں درد پیدا ہوا، عشق کا درد تھا، آگ تھی. شمس تبریز کو یاد کر کے بہت روتے، لوگوں کے آپ کے حالت پر ترس آنے لگا. اور آپ نے جو اشعار اس زمانے میں کہے، جو بھی اہل دل سنتا وہ رونے لگتا. اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں قونیہ سے نکل کر دمشق تشریف لے گئے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرشد کے فراق سے ایسا صدمہ پہنچا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے گوش نشین ہو گئے، یہاں تک کہ مریدان خاص کو بھی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی. پھر ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شمس تبریز نے دمشق سے مولانا کو خط لکھا. اس خط میں آتش عشق کو اور بھڑکا دیا. مولانا روم نے اس زمانے میں نہایت رقت والے، رونے والے، محبت والے اشعار لکھے. جن لوگوں نے حضرت شمس تبریز کی شخصیت کو برا بھلا کہا تھا، اب انہیں بہت شرمندگی ہوئی. سب لوگ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کرنے لگے. یہ عشق و سرمستی، سوز و گداز کی شاعری حضرت شمس تبریز سے بچھڑنے کا دراصل نذرانہ تھی. شمس تبریز کی نگاہ دل نواز ہی کا وہ فیض تھا کہ مولانا نے اپنے شعرائے آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم لکھی، اور تمام انسانیت پر انہوں نے ایک احسان کیا ہے. یہ کیا کتاب ہے؟ اگر اس پر میں گفتگو کروں تو دفتر کے دفتر چاہیے لکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے. گھنٹوں گھنٹوں بولتا رہوں، مہینوں مہینوں بولتا رہوں، تب بھی بات ختم نہیں ہوگی. بات وہی آتی ہے کہ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہ ہو سکے جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کر لی. اس شعر سے اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز کیا تھے، اور کم نظر لوگوں نے حسد کی بنیاد پر اتنے بڑے بزرگ کو کس طریقے سے مولانا روم سے الگ کیا اور کیسے ان کو رسوا کیا کرنے کی کوشش کی. مولانا روم کی چند روزہ جو صحبتیں تھیں حضرت شمس تبریز کے ساتھ، انہوں نے مولانا روم کو قلندر بنا دیا. پہلے مولانا بادشاہوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، قیمتی لباس پہنتے، گھر سے نکلتے تو سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے، آپ کے جاہو جلال کے آگے کوئی نہ ٹھہرتا، اور کوئی شخص اگر دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ بادشاہ آ رہا ہے. لیکن جس دن سے حضرت شمس تبریز کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی. ریاضت اور مجاہدہ اس قدر، اللہ اکبر، کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. کسی خادم نے مولانا روم کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، یعنی رات کا لباس ہی ان کا نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس تکیہ اور بستر بھی نہیں تھا. اگر نیند غالب آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. کوئی شخص یقین نہیں کرے گا اس بات پر کہ مولانا روم رحمتہ اللہ تعالی علیہ پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے اور مسلسل دس دس بیس بیس دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے. اذان ہوتی تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، اور نماز میں اتنے زیادہ منہمک ہو جاتے، اتنے زیادہ غرق ہو جاتے کہ پھر انہیں کچھ خبر نہ رہتی. اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نیت باندھتے تو دو رکعتوں میں صبح ہو جاتی. مولانا روم روتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، آپ کی ساری داڑھی اور سینہ آنسوؤں سے بھر جاتا، تر ہو جاتا. اور سردی کے عالم میں آپ جب آپ کے آنسو ہوتے تو آپ کے آنسو جمنے لگتے، لیکن آپ کا استغراق کا عالم، آپ کی عقیدت کا عالم، آپ کی محبت کا عالم اللہ سے اور اس کے رسول سے کم نہ ہوتا. آپ بہت زیادہ قناعت پسند تھے. جتنے بھی تحفے آپ کے پاس بادشاہوں کی طرف سے آتے وہ آپ اپنے مریدوں میں بانٹ دیتے، اور آپ کے مریدان خاص میں حضرت صلاح الدین زوکوب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حسام الدین چلبی، جس کو چلپی بھی کہتے ہیں، ان کے پاس آپ یہ سب کچھ بھیج دیتے کہ فوری طور پر اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا روم کے صاحبزادے سلطان ولد اسرار کرتے تو حسب ضرورت تھوڑی بہت رقم رکھ لیتے. جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا تو اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے والہانہ انداز میں فرماتے، آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ اپنی ابا یا پہرہن اتار کر دے دیتے. اللہ اکبر! یہ اللہ والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھا، اور مولانا کی جو محبت کا عالم تھا وہ یہ ہوتا کہ آپ کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے. آپ خود کتنی تکلیف میں بھی ہوتے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ کہتے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حضرت حسام الدین چلپی رحمت اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے. رات بہت گزر چکی تھی. مولانا جب وہاں پہنچے تو حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے. اگر مولانا چاہتے تو نصف شب کے بعد بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے. آپ کا یہ عمل حسام الدین چلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے یقیناً بہت زیادہ مسرت کا باعث ہوتا، خوشی ہوتی کہ مرشد گھر میں تشریف لائے ہیں. لیکن مولانا نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا اور نہ ہی کسی کو آواز دی. رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف گر گر کر سر پر جمتی رہی. جب صبح حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے. اندر گیا اور حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ مولانا روم کے خلیفہ آپ گھر میں ہیں، سرکار باہر تشریف رکھتے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے ہیں سخت برف میں، آپ باہر نکلے. اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگے. مولانا نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے. جب حساب الدین کے آنسو رک گئے تو فرمایا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے گھر کے رہنے والوں کو بھی زحمت ہو. یہ واقعہ اس قدر پر تاثیر تھا کہ حسام الدین چلپی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے. اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، پیر و مرشد رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کا زندہ مظاہرہ کر سکیں کہ خدمت خلق کس کو کہتے ہیں۔ عزیزو، اولیاء کرام کی یہ گفتگو جو اس وقت جاری ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم تکلیف خود اٹھا لیں لیکن ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، خود تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ لیں تو زندگی کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی۔ پیر و مرشد کا تعلق آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنا اور محسوس کیا ہوگا، اور تصورات کی آنکھوں سے دیکھیے کہ یہ اولیاء کیسے نظر آتے ہیں، اللہ کی نشانی نظر آتے ہیں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ اللہ کی برہان ہے، اللہ کی نظیر ہے۔ اللہ تعالی اپنے ان نیک لوگوں کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔